नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा, जो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखी है, उसके एक अहम अध्याय पर बात कर रहे हैं।
जी हाँ, अध्याय का नाम है आराध्य सत्ता की साधना संगिनी। ये वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है।
बिल्कुल, ये अध्याय उनके आध्यात्मिक जीवन और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति उनका जो अनन्य समर्पण था, उस पर रोशनी डालता है।
हाँ, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक सह संस्थापिका ही नहीं थी, बल्कि एक उच्च कोटि की साधिका भी थी।
तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस अध्याय में क्या खास है। पहली बात जो सामने आती है वो है उनका समर्पण और संतुलन।
सही कहा, उनके लिए गुरुदेव ही सब कुछ थे, गुरु इष्ट आराध्य सब कुछ।
हाँ, और फिर भी बाहरी तौर पर देखिए तो घर परिवार, फिर गायत्री परिवार संस्थान के इतने सारे काम सब उन्होंने संभाला।
बिल्कुल, और कमाल ये है, जैसा आपने कहा, कि इन सब जिम्मेदारियों के बीच भी उनकी जो आंतरिक स्थिति थी वो एकदम अलग थी। मतलब संसारिकता से पूरी तरह अछूती,
अलौकिक।
हाँ, अलौकिक। यही साधना संगिनी होने का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ आता है
कि कैसे गहन आध्यात्मिकता और दुनियावी कर्तव्य दोनों साथ चल सकते हैं।
एग्जैक्टली।
और उनका ये समर्पण ही था जिसने उनकी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था की नींव रखी।
हाँ,
ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने दोनों भूमिकाएं निभाई।
अच्छा, फिर एक और बहुत रोचक बात आती है, उनकी मध्य रात्रि की साधना।
हाँ, वो तो बहुत ही खास है,
क्योंकि दिन में इतनी व्यस्तता थी तो साधना का समय तय हुआ आधी रात से सुबह तक का।
जरा सोचिए, रोज केवल 3-4 घंटे की नींद।
हाँ, और फिर भी वो उस समय गुरुदेव के साथ साधना करने में मतलब परम आनंद अनुभव करती थी। ये समर्पण का स्तर दिखाता है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और शुरुआत में जो अनुभव हुए, प्राण संचालन की गुह्य क्रियाएं, फिर गोपनीय बीज मंत्रों से दिव्य केंद्रों का जागरण, ये सब बातें बताई गई हैं।
हाँ, और ये अनुभव ऐसे थे जो शायद शास्त्रों में सिर्फ संकेत रूप में मिलते हों, पर उनका वास्तविक अनुभव तो वो अलग ही था।
ये तो फिर वही बात हुई गुरु गम्य ज्ञान वाली।
बिल्कुल, ये ज्ञान केवल गुरु की कृपा और शिष्य के पूर्ण समर्पण से ही मिलता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं।
उनका वो अगाध विश्वास और समर्पण ही था जिसने उन्हें उन गोपनीय योग साधनाओं का अधिकारी बनाया।
सही बात है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन का महत्व यहाँ साफ दिखता है।
फिर आगे बात आती है उनके सूक्ष्म शरीर की। साधना से उनका सूक्ष्म शरीर इतना तेजस्वी हो गया कि वो आसानी से स्थूल शरीर से अलग होकर यात्राएं कर सकती थी, शिष्यों की पुकार पर उनकी मदद को पहुंच जाती थी।
हाँ, पुस्तक में ये भी आता है कि शुरुआत में गुरुदेव उनके स्थूल शरीर की रक्षा करते थे
जी, लेकिन बाद में उनकी साधना इतनी बढ़ गई कि वो खुद ही अपने स्थूल शरीर की रक्षा करने में समर्थ हो गई।
अच्छा।
और तब उनका ध्यान ज्यादातर गुरुदेव के जो साधनात्मक कार्य थे उनमें सहभागी बनने पे हो गया, खासकर शिष्यों के कष्ट निवारण में सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का उपयोग करके।
योग दर्शन में सूक्ष्म और कारण शरीर की बात आती है, लेकिन ऐसी सिद्धियां पाना ये तो विरले महायोगियों को ही मिलती हैं।
सही कहा।
पर यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये सामर्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं था, ये करुणा और सेवा का माध्यम बन गया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, मतलब सच्ची आध्यात्मिक शक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है, जैसा यहाँ दिखता है।
एक और पहलू है गुरु महिमा और अपनी गोपनीयता।
हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है।
उन्होंने कई बार गुरुदेव की दिव्यता के अनुभव साझा किए, जैसे हिमालय के सिद्धगण कैसे उनका सम्मान करते थे, ये वो मनुष्य देह में साक्षात ईश्वर हैं, ऐसी बातें
जी।
पर अपने अनुभवों के बारे में वो लगभग छुप ही रहती थी,
बिल्कुल मौन।
हाँ, कहती थी अध्यात्म अनुभव का विषय है, कहने बताने का नहीं, चर्चा करने से साधना का बल घटता है। उन्होंने अपनी मध्यरात्रि की साधना को गुप्त रखने का उदाहरण भी दिया।
ये गुरु शिष्य परंपरा की एक बहुत सुंदर बात है, शिष्य गुरु की महिमा गाता है पर खुद विनम्र और मौन रहता है।
सही, और उनका ये कहना कि सच्चाई को साधना की अनुभूतियों में ही जाना जा सकता है, ये अनुभव जन्य ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। मतलब सच्ची आध्यात्मिकता दिखावे में नहीं, गहरे आंतरिक अनुभव में है।
तो कुल मिलाकर इस अध्याय से हमने वंदनीय माता जी का वो अटूट समर्पण देखा, उनकी वो गहन गोपनीय साधना, योगिक शक्तियों का सेवा में उपयोग, और साथ ही उनकी वो अद्भुत विनम्रता।
हाँ बिल्कुल, ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है
कि क्या आध्यात्मिक प्रगति का असली मापदंड सिर्फ सिद्धियां पाना है, या फिर ये कि उन सिद्धियों को, उन क्षमताओं को कितनी सहजता से कितने निस्वार्थ भाव से ईश्वर की इच्छा समझकर दूसरों की सेवा में लगाया जाता है,
जैसा वंदनीय माताजी की यात्रा में हमें दिखता है अपने आराध्य के साथ।
बिल्कुल,
ये एक सोचने वाली बात है।